Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bar bar aapko pranam ho raha hai. Swasti me astu, mera kalyan ho. Kon bol rahe hain? यमराज कहते हैं मेरा कल्याण हो, क्योंकि अतिथि जब द्वार पर आते हैं तो अतिथि का सत्कार से ही आतिथेय का कल्याण माना गया है, बड़ा महत्व है। दूसरी बात इसमें यह भी देख सकते हैं, स्वस्ति में अस्तु, मानो भगवान अपने ही अंशभूत जीवों को देख करके और बड़े दुखी होते हैं, ये जीव कहां भटक गए। जिनका सच्चित आनंद स्वरूप था और है, उसे सच्चित आनंद स्वरूप को भूल करके ये मेरे जीव कहां भटक गए हैं। इस बात की मानो प्रभु को बड़ी वेदना, बड़ा दुख है, और वो यही चाहते हैं कि कैसे भी हो ये जीव मुझे प्राप्त करके मेरे स्वरूप को जैसा मैं हूं वैसा प्राप्त कर ले। माने जीव के रूप में स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो, अर्थात जीव को भी भगवान अपने रूप में ही देख रहे हैं कि मैं ही इस रूप में हूं और उस रूप में कल्याण हो। भगवद गीता के 13वें अध्याय में जब परिचय देते हैं भगवान जीव का, तो कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षत्र मित्य विधीयते यत्र यो व्यति तम प्राहु क्षत्रज्ञ इति तद्विदः क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। जितने भी शरीर हैं उन शरीरों के भीतर में जो बैठा हुआ जीव रूप से ईश्वर का रूप है, उसको भगवान स्वयं कहते हैं कि क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षत्रज्ञ मुझे समझो, मैं क्षत्रज्ञ हूं। अर्थात जीव का कल्याण का अर्थ हुआ कि इस क्षत्रज्ञ रूप से विराजमान जो परमेश्वर है, वो कहते हैं कि इस रूप से कल्याण हो जाए। लेकिन कब होगा? जब लौकिक दृष्टि से धर्म पालन किया जा रहा है, चित्त शुद्धि की जा रही है, तो यहां पर श्रोता और वक्ता, अतिथि और आतिथेय एक ही तत्व है। इस दृष्टि से कहते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से विचार करो तो कहा कि स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो, और व्यवहारिक दृष्टि से विचार करो तो अतिथि इतना महान होता है कि यमराज भी उसका अतिथि का सत्कार करके अपना कल्याण देख रहे हैं। इस दृष्टि से अध्यात्म विचार आपके सामने मैंने रखा कि यमराज कहते हैं कि स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। कल्याण की कामना ज्ञानी करेगा कि अज्ञानी करेगा, साधक करेगा कि सिद्ध करेगा? यदि महाराज यम स्वयं साधक है, सिद्ध नहीं है, तो अपने शिष्य को ज्ञान देकर के सिद्ध कैसे बना देंगे? स्वयं बंधन में होंगे तो शिष्य को मुक्त कैसे कर देंगे? गुरु तो स्वयं बंधन मुक्त होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कल्याण स्वरूप को अनुभूत किया हुआ होना चाहिए, और ऐसा गुरु ही शिष्य का कल्याण कर सकता है। गुरु स्वयं बंधन में हो, वो अपना कल्याण कैसे कर लेगा? हमारे गुरुदेव एक उदाहरण सुनाया करते हैं, एक बहुत अच्छी बात। जो स्वयं मुक्त नहीं है, स्वयं को विषयों की कामना है, स्वयं कहीं भूख में पड़ा हुआ है, स्वयं कहीं अज्ञान के गर्त में गिरा हुआ है, वो अपने शिष्य का कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। दो भिखारी थे किसी नगर में, और एक भिखारी, दोनों के दोनों अंधे थे, उनमें से एक भिखारी किसी नगर में भिक्षा लेने के लिए जाता है। वो अपनी भीख लेकर के जब वापस निकलने लगा, दिखाई नहीं पड़ता था, आवाज लगाता है, कोई मुझे रास्ता दिखा दे, कोई मुझे रास्ता दिखा दे। वो व्यक्ति अंधा गांव से भीख लेकर के और कहीं से रोटी मिली थी अपने हाथ में लिए हुए हैं, आंख बंद है, और बोलता कोई मुझे रास्ता दिखा दे। इतने में योग से जो उसी गांव का कोई दूसरा अंधा था वो भी भूखा था और भिक्षा के लिए गांव में जाने लगा। वो प्रवेश करने जा रहा था, वो भिक्ख लेकर के पहले वाला आ रहा था। वो बोल रहा है कोई मुझे रास्ता दिखावे। सामने से आते हुए अंधे ने कहा तुम कौन हो? कहा भैया मैं अंधा हूं। कहां गए थे? भूख लगी थी और रोटी मांगने के लिए गया था। वो अंधा पूछता रोटी मिली? हां रोटी तो मिल गई, देखो मेरे हाथ में है, मैं सोच रहा हूं गंतव्य स्थल पर जाकर के खाऊंगा, मगर रास्ता भटक गया, मुझे कोई मार्ग दिखाएं। वो सामने वाला अंधा कहता अच्छा चल तो मेरा हाथ पकड़, तेरा हाथ मेरे हाथ में दे, दिखाए तो उसको भी नहीं पड़ता। आवाज से जहां पर दृष्टि काम नहीं करती है वह शब्द दृष्टि काम करती है, वाक ज्योति काम करती है। एक दूसरे के नजदीक पहुंचे, जो अंधा रोटी मांग करके लाया है, जो भूखा अंधा है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ा, देखा इसके हाथ में रोटी है। वो जो भूखा अंधा गांव में जा रहा था उसने कहा चल तेरे हाथ की रोटी मेरे हाथ में दे और तू मेरा हाथ पकड़ दे। एक हाथ से उस अंधे का हाथ पकड़ लिया, दूसरे हाथ में उस अंधे की रोटी ले ली। वो आने वाला अंधा इतना चालाक था, उसको भी जोर से भूख लगी थी। एक हाथ से तो अंधे का हाथ पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में जो उसकी रोटी ली थी उसको खाना शुरू कर दिया। चलता जा रहा है, उस अंधे की मांगी हुई रोटी को दूसरा अंधा खा रहा है और उसका हाथ पकड़ करके चले जा रहा है। परंतु दृष्टि वाला चले और दृष्टिहीन व्यक्ति चले, दोनों की चाल में बड़ा अंतर होता है। दिखाए तो उसको भी नहीं पड़ रहा था, कहीं पत्थर को ठोकर लगी, कहीं गड्ढे में धड़ाम से पैर गिरा, कहीं कोई कांटा लगा, उसके चाल और चाल में बीच में आने वाली जो चोट खतरे थे उसको देख करके पीछा वाला जो अंधा था, जिसने रोटी मांग करके लाया था, जिसने अपनी रोटी उस अंधे के हाथ में दे दी, जिसने उस अंधे का हाथ पकड़ लिया, वो कहता अरे भैया मैं तो अंधा हूं लेकिन तू तो आंख वाला है, मेरे बार बार पैर में पत्थरों की ठोकर लग रही है, कहीं कांटे चुभ रहे हैं, कहीं गड्ढे में पैर गिर रहा है, जरा अच्छे रास्ते से ले चलो। वो कहने लगा मैं क्या करूं, रास्ता ऐसा ही है, ये तो कठिन मार्ग है, ऐसे ही चलना पड़ेगा। बात यह कि उसको भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, चले जा रहे हैं, बार बार ठोकरें लगती हैं, कांटे चुभते हैं, गड्ढों में पैर गिरते, बेचारा बोलता है भाई साहब कहीं गिरा मत देना। वो कहता नहीं चिंता मत करो, आप मेरा हाथ पकड़े चले आओ, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूंगा। दोनों अंधे चले जा रहे हैं, एक सचमुच में अपने को अंधा स्वीकार किया हुआ है, दूसरा अंधा तो है मगर चालाक अंधा है, और उसका भी हाथ पकड़ के खींच रहा है। चलते 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 सचमुच में सामने कोई कुआं आ गया, दिखाई नहीं पड़ा, और वो जो चालाक अंधा था चूंकि आगे आगे चल रहा था इसलिए सबसे पहले वो कुएं में गिरा, पीछे वाले का हाथ पकड़ रखा था, लगा झटका, वो भी धड़ाम से कुएं में गिरा, दोनों ही कुएं में गिर गए। अच्छा था कि शायद तैरना आता था, डूबे नहीं और मरे नहीं, मगर कुएं में गिर पड़े। जब गिर ही गए तो वो जो अंधा रोटी मांग करके लाया था, पीछे पीछे उसका हाथ पकड़ करके बेचारा चल रहा था, अंधा कहने लगा भले आदमी, अरे जब तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था तो मुझे बोल देते, मुझे तो कुएं में, तू भी कुएं में गिरा और मुझे भी कुएं में गिराया, इसे तो अच्छा था कि साफ साफ बोल देना चाहिए था, मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया। वो अंधा कहने लगा चालाक अंधा, भैया भले ही मैं कुएं में गिर गया और तुझे भी कुएं में गिरा दिया, लेकिन मैंने अन्याय नहीं किया है, फिर भी मैंने न्याय किया है। क्यों, ये क्या न्याय हुआ? अरे भले ही मैं गिर गया और मेरे कारण तू भी गिरा, लेकिन इतना तो मैंने किया कि पहले मैं गिरा हूं बाद में तुझे गिराया, वो भी इसलिए कि मैंने तेरे हाथ की मांगी हुई रोटी खाई है, तो तुम्हारी रोटी जब मैंने खाई तो पहले कुए में मैं गिरा और बाद में तुमको गिराया। तो संसार में सज्जनों प्राय ऐसा हो जाता है, जिसको स्वयं को अपने दृष्टि प्राप्त नहीं है, जो विवेक दृष्टि प्राप्त नहीं है, स्वयं को आत्म साक्षात्कार नहीं है, और वो बीड़ा उठा ले कि मैं तुम्हारा सबका कल्याण कर दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारी रोटी खाई है और जब मैं गिरूंगा तो तुमको भी साथ में लेकर के डूबूंगा, ये स्थिति हो जाती है। इसलिए इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तो बहुत ही कुशल की व्यक्ति आवश्यकता होती है। इसलिए यमराज कहते हैं स्वस्ति में अस्तु, देखो हमारा कल्याण हो, इसलिए कि व्यवहार यदि हमारा स्पष्ट नहीं है तो हम परमार्थ पथ पर कभी भी योग्यता स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहले तो व्यवहार शुद्धि की आवश्यकता है सज्जनों, एक बात बड़ी ध्यान रखने की है, कई लोग प्राय वेदांत सुनते 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 स्त्री बिगड़ जाती है, व्यवहार खो बैठते हैं, शुष्क जीवन हो जाता, सूखे पेड़ के जैसा हो जाता है। कुछ तो ऐसे भी देखे गए हैं कि नास्तिक हो जाते हैं। मैं तो बहुत बार निवेदन करता हूं कि यदि इस वेदांत मार्ग में चलते चलते आप गिर जाओगे, पिसल जाओगे, तो आप आस्तिक नहीं, आप नास्तिक बन जाओगे, ज्ञान के पथ से भटक गए, नास्तिक बन जाएंगे। यदि भक्ति के पथ से आप भटक गए तो आपका जीवन रागी हो जाएगा। जो प्रेम भगवान से होना था वो संसार के नश्वर पदार्थों में कर बैठोगे, आपका प्रेम राग में परिवर्तित हो जाएगा, वो भक्तिमान वो रागी हो जाएगा, विषयी प्राणी बन जाएगा, विषयों का कीड़ा हो जाएगा। योगी यदि योग पथ से भ्रष्ट हो जाता है तो उसको रोगी होना पड़ेगा। इसलिए ये तो वेदांत मार्ग है, यहां कुशल शुद्ध चित्त की आवश्यकता है, और उसको पाने के लिए व्यवहार की कुशलता भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए यमराज व्यवहार पक्ष को यहां पर रखते हुए बोल रहे हैं, आप अतिथि हैं और मैं आतिथेय हूं। अतिथि का सत्कार करना आतिथेय का धर्म होता है। अतिथि अग्नि है और वो यदि अग्नि धधक उठी, प्रज्वलित हो उठी, तो जला डालेगी, सबका अनिष्ट कर देगी। इसलिए हमारा कल्याण हो ऐसी कामना करते हैं। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वरणिष्व। तीन रात्रि तक अनशनन किए हमारे द्वार पर तुम रहे, इसलिए हमारा यही निवेदन है कि आप हमसे कोई तीन वरदान मांग लो। वरदान मैं देने वाला हूं, दे सकता हूं, पर ऐसी चीज मांगना जिसको मांगने के बाद फिर और कोई मांगना बाकी न रह जाए। वर का अर्थ क्या है? ऐसा श्रेष्ठ अभिष्ट को मांगना जिसे श्रेष्ठ को पाने के बाद फिर और कोई मांगने की इच्छा न रह जाए। इसलिए तीन वरदान, तीन श्रेष्ठ जो तुम्हारे मन में निश्चय है वो मेरे से तुम मांग लो और मैं तुम्हें देने का संकल्प कर रहा हूं, मैं जरूर दूंगा। यमराज ने जब नचिकेता को कहा, नचिकेता का विचार देखिए, तीन वरदान मांगेंगे। तीनों वरदानों की बड़ी विलक्षणता है, जिधर प्राय लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। सज्जनों तीन वरदान, सबसे पहला जो वरदान नचिकेता मांगने जा रहा है वो मांगने जा रहा है पितृ परितोष, अपने पिता की प्रसन्नता। संसार में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसके ऊपर पितृ ऋण चढ़ता है, उस पर ऋषियों का ऋण चढ़ता है, उस पर देवताओं का ऋण चढ़ता है, और जो व्यक्ति ऋणत्रय से मुक्त नहीं होगा उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। इसीलिए नचिकेता उस पक्ष को यहां पर सामने रख रहा है कि सबसे पहले मेरे सिर पर जो हमारा पितृ ऋण है उस ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं, और दूसरी दृष्टि नचिकेता यह देख रहा है कि परम सत्य को, उस परमार तत्व को पाने की जो हम अभिलाषा रखते हैं, परंतु उस परम शांति को, परम सत्य को पाने की अभिलाषा रखने वाले को कम से कम पहले अपने घर में शांति जरूर कर लेनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की दृष्टि रखने वालों, कम से कम अपने को शांत, अपने को प्रसन्न, अपने को सुधार लेना चाहिए, अपने साथ अपने परिवार को ठीक कर लेना चाहिए। अपने घर की शांति पहली चीज है, इसलिए पहले तो पारिवारिक शांति साधक के घर में होने चाहिए। पारिवारिक शांति यदि घर में हो गई तो चूंकि उस परिवार का समधियों से संबंध है, रिश्तेदारों से संबंध है, अड़ोसियों पड़ोसियों से संबंध है, समाज से संबंध है, प्रदेश और देशवासियों से संबंध है, चूंकि उसका मानवता से संबंध है, तो जब व्यक्ति अपने को और अपने परिवार को सुख शांतिमय बना सकता है, सुखी बना सकता है, वही व्यक्ति समाज का भला कर सकता है। जो व्यक्ति अपने को सुखी नहीं बना पाया, अपने परिवार को सुखी नहीं बना पाया, परिवार को शांति नहीं दे पाया, कभी भी वो व्यक्ति दूसरे को शांति नहीं दे सकता है। इसको अच्छी तरह से याद रखना, बुरा मत मानिए। मेरे सामने सच्ची घटना आई, मैं आपको बता रहा हूं। घाट को पर मैं प्रवचन कर रहा था, किसी भक्त के घर में भोजन के लिए गए। एक वृद्धा मां प्राय रोज सत्संग में आती थी, रविवार का दिन था और भोजन के लिए हमको ले गई। योग से परिवार के सभी व्यक्ति वहां पर विद्यमान थे। वृद्धा मां थी इसलिए उसके बेटे, बहुएं, पौत्र, पौत्रों की पत्नियां आदि पूरा परिवार था, सब वहां पर बैठे हुए थे। भोजन के बाद ऐसे सब लोग बैठ गए। वृद्धा मां कहने लगी कि स्वामी जी कुछ सुनाओ। परिवार इतना प्यारा, इतना अच्छा परिवार था, हंसमुख परिवार, बड़े कुशल। थोड़ी देर में हमको लगा कि पूरा परिवार हमारा कोई बहुत पुराना परिचित परिवार है। बातचीत होने लगी, सत्संग की चर्चा होने लगी, और कुछ सुनाने के बाद सबको मैंने कहा, देखो ऐसा परिवार भी बहुत कम मिलता है, आप कितने अच्छे लोग हैं, एक मेरी बात मानोगे, हो सके तो रविवार के दिन सत्संग में आ जाया करो, बाकी तो आपको समय न भी मिले पर रविवार को जरूर सत्संग में आना चाहिए। तो उस परिवार का एक नव युवक, उस माताजी का पुत्र, वो कहता, महाराज सत्संग में क्या होता है? मैंने कहा, सत्संग में भी होता तो प्रवचन है, पर इतने भी अच्छे विचार मिलेंगे, मन का मार्जन हो जाता है। जैसे घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाया जाता है तब घर की सफाई रहती है, और यदि 10-5 दिन के लिए मकान को बंद करके, सफाई करके बंद करके छोड़ दो, और जब 11वें दिन खोलोगे तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रज अवश्य मिलेगी। रोज रोज मकान की सफाई आवश्यक है, ऐसे ही हमारे मन की सफाई भी प्रतिदिन के सत्संग से होनी चाहिए। जब मन साफ होगा तो मन बड़ा निर्मल और शांत हो जाएगा, व्यवहार करते हुए भी आपको बड़ी शांति मिलेगी। तो वो नवयुवक मुझे कहने लगा, स्वामी जी आप कह रहे हैं मैं आपकी बात काटूंगा। उनका बोलिए, ये जो हमारी दादी जी हैं, इनको 25 वर्ष हो गए सत्संग में जाते हुए, लेकिन सच्ची बात ये है कि जब ये हमारे घर पर नहीं होती है तो शांति रहती है, ये घर पर आते ही खटपट फैल जाती है। हमारे घर में कभी भी अशांति होती है तो उसका कारण यही है। इतना सत्संग सुन करके भी यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया, हम अपने परिवार को सुखी, प्रसन्न और शांत नहीं बना सके, तो हमारा सत्संग किस काम में आया? हम अपने आप में परिवर्तन न कर सके, वो थोड़ा रंग चढ़ता है और सीढ़ियों से, क्या लिफ्ट से नीचे उतरते उतरते रंग यही का यही छूट जाता है और फिर आवे रंग चढ़ जाए फिर छूट जाए। यदि ऐसी जो स्थिति होती है तब तो उसके लिए तो कठोर उपनिषद सुनाने की जरूरत भी मैं नहीं समझता हूं, बुरा मत मानी। यहां कथानक बता रहा है कि नचिकेता जैसा व्यक्ति जो एक लक्ष्यवान है और जिसकी इतनी पवित्र दृष्टि है, इतना पवित्र लक्ष्य है कि सबसे पहले हमारा व्यवहार सुधरना चाहिए और जिन लोगों के बीच हमारा जीवन निर्वाह है, जिनके बीच हम रहते हैं, हमारा परिवार शांत समृद्ध और प्रसन्न होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, हमारा परिवार पुष्प की तरह खिला हुआ होना चाहिए, यह दृष्टि है उस नचिकेता की। इसलिए विचार करके वो कहने लगा, मैं आपसे पहला वरदान मांगना चाहता हूं। ये बड़ा सुंदर वरदान है, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्। वीतमन्युर गौतमो माभि मृत्यु हो त्वत्प्रसृष्ट माभि वदेत प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। ये तीन वरदान देने के लिए जो आपने मुझे कहा उसमें पहला वरदान के रूप में मैं आपसे ये वरण करता हूं कि मेरे जो पिता है, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्। हमारे पिताश्री शांत संकल्प हो जाए, मेरे पिताश्री सुमना हो जाए, मेरे पिताश्री वीत मन्यु हो जाए, क्रोध गई हुई बात बन जाए, उनके भीतर में क्रोध न रह जाए। और जब आप मुझे यहां से वापस लौटाएंगे, मुझे पता है आप अपने पास सबको रखते नहीं है क्योंकि आपकी जगह सीमित लगती है, जो भी आता है आप उसको वापस लौटा दिया करते हैं। यदि सारे के सारे जाएं और यम द्वार पर यम महल में ही इकट्ठे होते जाए तो महाराज बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यम का काम है, आया उनसे मिली, भक्त की बातचीत हुई, उसकी रिपोर्ट देखी, जो जैसा करके आया है तद्रूप उनको वापस लौटा देता, भेज देता है। इसलिए कहते हैं कि मुझे मालूम है आप लौटाएंगे। पहले भी जब आया था तो स्वर्ग का परिदृश्य का आनंद दिला करके और यहां की सैर सपाटे करवा करके आपने मुझे वापस भेज दिया था, क्योंकि आप अपने पास रखते ही नहीं है इसलिए मुझे आप वापस लौटाएंगे। परंतु बात यह है कि एक बार मर करके कोई दोबारा आ जाए तो उसको परिजन स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, घड़ी मना करते हैं। नहीं तो बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान में आ रहा है, सुना दूं? अरे आज तो संडे है, क्या फर्क पड़ता है। हमारे एक प्रिय संत अपने जीवन की कोई घटना सुनाया करते थे, जब वो विद्यार्थी जीवन में बनारस में पढ़ते थे तो वो तो ब्रह्मचारी थे और एक गृहस्थ बालक था, विद्यार्थी था जो उनके साथ पढ़ता था। जब उनका अध्ययन पूर्ण हो गया तो ब्रह्मचारी महात्मा तो कथा प्रवचन सत्संग स्वाध्याय में लग गए, अपने साधना में लग गए, और वो गृहस्थ विद्यार्थी था अपना अध्ययन करने के बाद सरकारी सर्विस में लग गया। वो परिवार का एकमात्र सहारा था, किसी स्कूल में अध्यापन का काम करता था, लेकिन उसका कोई दुर्भाग्य था, एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, अटैक आया या कोई तकलीफ हुई और जिस स्कूल में पढ़ा रहा था वहीं बैठे बैठे ही लुढ़क गया। युवा, कुछ समय पहले शादी हुई थी, सिर्फ एक बालक आया है, घर में एक मां का सहारा था, पिता है नहीं, छोटा भाई था अभी वो भी विद्या अध्ययन कर रहा था, पूरे परिवार का एकमात्र परिवार का पालन करने का जो दायित्व था उसी व्यक्ति के ऊपर था जिसने प्राण त्याग दी। ऐसी दर्दनाक जब घटना हुई, वो संत बताते थे कि मुझे भी जानकारी मिली कि हमारा जो विद्यार्थी जीवन का मित्र है आज अचानक शरीर छोड़ दिया, बड़ी उनको भी गलानी हुई। घर पर गए, वहां गए तो सब लोग कई इकट्ठे हो गए, उनके अंत्येष्टि की तैयारियां हुई, पांच भौतिक पार्थिव शरीर को लेकर के और गंगा के किनारे गए, वहां दाह संस्कार किया और दाह संस्कार के बाद में जो भस्मी और अवशेष थे उसको गंगा जी में प्रवाहित करना था। जब गंगा में प्रवाहित करना था तो दाह संस्कार जिन्होंने विधि से करवाया पंडित जी, उसके छोटे भाई के द्वारा ही सब संस्कार करवाए। अब छोटे भ्राता को कहते हैं, देखो अब इस चिता को ठंडा करना है। चिता को ठंडा करने के लिए गंगा जी से जल ला करके 7 घड़े पानी के चिता में डालना है। तो 7 घड़े ला ला करके चिता में डालना और जब 7 घड़े पानी के डाल दो तब फिर यहां से चल देना और घर की तरफ मुंह करके चल देना, अपने घर की ओर मुंह करना। और जो 7 घड़े पानी के डालने के बाद जो मटकी है उसको पीछे से ऐसे ही चिता की ओर फेंक देना, मुंह अपने घर की ओर कर लेना और फिर घर तक मुड़ करके देखना मत। यदि बीच में मुड़ करके पीछे देख लिए तो ये प्रेत बनकर के आएगा, इसलिए मुड़ करके देखना मत। भाई ने वही किया, वो मटकी उठा करके 7 घड़े पानी के डाले और उसके बाद गांव की ओर मुंह करता है, घर की ओर मुंह किया और मटकी को उठा करके पीछे से फेंका और घर तक लौट करके वापस देखा नहीं। जो व्यक्ति अपने भाई की मृत्यु पर विलाप कर रहा था, रो रहा था, हाय भाई हाय भाई अब हमारा क्या होगा, ये तो संसार का नियम है, मरने वाले को कोई भी नहीं रोता है, हमने तो नहीं देखा। मरने वाला के लिए कहते तुम तो चले गए अब हमारा क्या होगा, किसको रो रहे, जाने वाले को कोई नहीं रोता, अपने को रो रहा अब हमारा क्या होगा। वो जो विलाप कर रहा था भाई जब चल पड़ा, लौट करके वापस देखा नहीं। सोचिए यदि वो भाई के लिए ही विलाप कर रहा होता तो प्रेत योनि में पर भी आने पर आएगा कौन, प्रेत बनकर के भी भाई ही तो आता। लेकिन इसलिए कि अब ये भाई आएगा तो हमें सुख नहीं दे सकता है, ये संसार का नियम है, संसार की ऐसी स्थिति है, बड़ा विलक्षण है संसार। इसलिए यहां पर यमराज कह रहे हैं, को नचिकेता बोल रहा है, आप जब मुझे वापस लौटाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पिता भी ये सोचे तो मर गया था, यम को दे दिया था, कहीं प्रेत बनकर के तो नहीं आ गया है, कोई अपनाने को तैयार नहीं होगा, इसलिए आपके द्वारा वापस प्रसृष्ट करने पर, लौटा देने पर पिताश्री मुझे यथावत पहचान ले, वैसा ही प्यार और प्रेम मिले, मेरे परिवार में शांति हो, यही वरदान प्रथम मैं आपसे मांग रहा हूं, जिसका विश्लेषण विस्तार से कल आपको सुनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः। ओम।